नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ अजय मसंत। नमस्कार अजय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार प्रियंका जी।
आगे बढ़े उससे पहले अब तक की हेडलाइंस जान लेते हैं। हार्दिक पांड्या आईसीसी टी20 क्रिकेट ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। टी20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम 3 दिन तक बेदल तूफान में फंसे रहने के बाद बारबाडोस से रवाना। टीम कल प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात करेगी। विंबलडन ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स के पहले दौर में सुमित नागल और सर्बिया के उनके जोड़ीदार दुसान लाजोविक पराजित। रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी अपने अपने जोड़ीदारों के साथ मैच खेलेंगे। और यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल की टीमें तय। बात क्रिकेट के मैदान की। आईसीसी टी20 क्रिकेट रैंकिंग में हार्दिक पांड्या संयुक्त रूप से ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। पांड्या 2 पायदान ऊपर चढ़कर श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसारंगा के साथ 222 अंक लेकर शीर्ष पर हैं। पहली बार भारत के किसी खिलाड़ी ने ये उपलब्धि हासिल की है। अजय जी, अगर विश्व कप में परफॉर्मेंस देखा जाए हार्दिक का, तो फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच में अहम मौकों पर विकेट लिए, चाहे चाहे वो डेविड मिलर का हो, हेनरिक क्लासन का हो, और अगर ऑल ओवर द पूरे टूर्नामेंट में देखे तो उन्होंने वर्ल्ड कप में 48 की औसत से 144 रन बनाए।
जी हाँ, अगर हम लोग हार्दिक पांड्या का अभी नहीं इस वर्ल्ड कप को ना देख के थोड़ा और पीछे चले जाएं, तो उन्होंने जितनी इंजरीज बैटल की, एक टाइम पे इनको बैक इंजरी हुई थी जिसके चलते वो कम से कम तकरीबन 1 साल तक वो खेल से बाहर रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने टीम में वापसी करी है। उसके बाद फिर उन्होंने गुजरात टाइटन्स को जो है टाइटल में जिताया। नेट से जब जिस साल वो टीम बनी थी उसी साल उन्होंने गुजरात टाइटन्स को टाइटल जिताई आईपीएल में। उसके बाद फिर उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस, सेकेंड ईयर में उनको रनर अप ट्रॉफी भी रनर अप बने आईपीएल के। उसके बाद उनको जो है ऑफर आया मुंबई इंडियंस आने का, तो मुंबई इंडियंस में जो आए उन्होंने इतना अच्छा कर्तव्य नहीं दिखा पाए, पता नहीं क्या था, आलोचनाओं के भी हाय शिकार बने, और काफी बूइंग भी हुई उनकी, काफी उनकी क्रिटिसिज्म भी हुई कि वो रोहित शर्मा को रिप्लेस करने आए हैं एंड ऑल दैट, बहुत सारी अटकलें लगाई जाने लगी। तो उन सबसे उभर के देखिए, इतना बड़ा जो उनका क्रिटिसिज्म जो मुंबई इंडियंस में जब वो जैसे कप्तानी के लिए आए उसमें जो उसको क्रिटिसिज्म मिला, वो रोए भी थे और उन्होंने काफी सारा उन्होंने क्रिटिसिज्म झेला, लेकिन उस सबसे उभर के आके इतना अच्छा प्रदर्शन देना, मे बी ही वॉन्टेड टू प्रूव हिमसेल्फ कि मैं जो हूं इन सब क्रिटिसिज्म से ऊपर हूं और मैं आगे निकल के आके अपना अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सकता हूं। उन्होंने अपना सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दिया और सिर्फ अपने एक लगन से उन्होंने बॉलिंग की, लगन से बैटिंग करी और पूरा हार्ट एंड सोल दिया, और जितने भी माइंड में जितनी भी थॉट्स आ रहे थे जब मुंबई इंडियंस बहुत नीचे खत्म हुआ था इस साल के आईपीएल में, आई थिंक दे फिनिश 9th या 10th, तो उससे उभर के जो है आना एक बहुत मुश्किल बात है। लेकिन और मैं ये भी क्रेडिट दूंगा बीसीसीआई को कि उन्होंने आईपीएल के परफॉर्मेंस पे हार्दिक पांड्या को नहीं चुना। उन्होंने कहा कि ये ऑलराउंडर हैं और ये इस तरह की भूमिका निभा सकते हैं एक मेजर इंटर वर्ल्ड स्टेज पे, तो वो जो बीसीसीआई लेके आई उनको भी ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि हार्दिक पांड्या को लेके आए और उन्होंने इसी हिसाब से परफॉर्मेंस दिया। 144 रन उन्होंने मारे और बहुत ही अच्छे औसत से मारे। फाइनल में उन्होंने 3 विकेट लिए, उसके अलावा उन्होंने शायद 11 विकेट लिए पूरे 8 मैचेस में लिए। फील्डिंग भी बहुत अच्छी करी एंड मुझे तो लगता है कि ही वॉज रोहित्स गो टू मैन। देखिए, ही वॉज काइंड ऑफ जैसे एक तो अर्शदीप सिंह थे, उसके बाद तीसरे हार्दिक पांड्या थे, तो इन तीनों बॉलर जसप्रीत बुमराह हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए या हार्दिक पांड्या, जब भी उनकी जरूरत पड़ी बॉलिंग की, उन तीनों ने जो है बखूबी जो है अपना किरदार निभाया और इंडिया को जीत तक ले गए।
बिल्कुल, आलोचनाओं के बीच क्योंकि आईपीएल के बाद सीधा इन्होंने
मुश्किल से हफ्ते भर का समय था,
आई थी मुंबई इंडियंस जो टीम थी, और उसके बावजूद धीरज से जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, माइंड को जैसे हम धोनी की तारीफ कर देते एकदम कूल रह के खेलना, वैसा
ये भी बिल्कुल, ये कैप्टन नहीं थे लेकिन उन्होंने उसी ऐसे कंपोजर से खेला कि आपने कभी भी एक आवाज भी नहीं सुनी होगी पूरे ग्राउंड पे, जैसे हल्ला गुल्ला होता है, हार्दिक पांड्या इज नोन फॉर दैट फ्लैशी टाइप के थोड़े से प्लेयर हैं, लेकिन बिल्कुल शांत स्वभाव से खेले, कुछ भी उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर लाने नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पे फोकस किया।
बिल्कुल, चाहे उन्होंने बांग्लादेश के साथ सुपर आठ मैच में नाबाद 50 रन की पारी खेली, और चाहे उनकी बॉलिंग हो चाहे फील्डिंग हो, बहुत ही बखूबी निभाया। रैंकिंग की बल्लेबाजों की बात करें तो शीर्ष 10 में सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल ही दो भारतीय बल्लेबाज हैं, सूर्य दूसरे और जायसवाल सातवें स्थान पर रहे। यशस्वी को हालांकि खेलने का,
जी हाँ यशस्वी, लेकिन अभी उनको खेलने का मौका जिम्बाब्वे में खेलने का मौका मिलेगा, 5 मैच की T20 आई सीरीज है। लेकिन जसप्रीत बुमराह भी उनकी भी रैंकिंग काफी अच्छी बढ़ी है, वो
पहुंच गए,
हाँ 12वें स्थान पर पहुंच गए, मेरे ख्याल से 10 या 11 रैंकिंग का उनको जो है 12 रैंकिंग का फायदा मिला है, उससे उनकी अब टॉप 10 में आने में कोई ज्यादा देरी नहीं है। अगर ये जिम्बाब्वे भी जाते अगर T20 खेलने तो डेफिनेटली ये भी टॉप बोलर्स टॉप 10 में आ जाते, लेकिन ऑफकोर्स सेलिब्रेशन का टाइम है, टीम वापस आ रही है कल हिंदुस्तान सुबह और शाम को, और प्रधानमंत्री जी उनको फेलिसिटेशन करेंगे दोपहर में, उसके बाद टीम वापस बॉम्बे जाएगी और वहां पे उनका मरीन ड्राइव पे स्वागत होगा, तो अभी सब लॉट ऑफ थिंग्स लाइंड अप फॉर द टीम, और ये तो सिलसिला मेरे ख्याल से 10 दिन तक चलता ही रहेगा।
बिल्कुल, और गेंदबाजों की सूची में जो टॉप 10 में है उसमें भी भारतीय दो हैं, अक्षर पटेल सातवें और कुलदीप यादव 3 स्थानों की छलांग लगाकर 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने भी
उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा पूरे सीरीज में, और जहां की अमेरिका में यूएस में जब यूएस लेग हो रहा था T20 वर्ल्ड कप का, वहां पे पेसर फ्रेंडली पिचेस थी, तो मैं ये कहूंगा कि रोहित शर्मा ने जिस हिसाब से अपनी कप्तानी का अच्छा किरदार निभाया, अच्छे पेस बोलर्स को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया यूएस सॉयल पे, वहीं जब आपका सुपर एट्स के मैचेस शुरू है वेस्ट इंडीज में, तो वहां पे उनको लगा कि यहां पे स्पिनर ज्यादा भारी पड़ेंगे बल्लेबाजों के ऊपर, तो उन्होंने स्पिनर्स को लगाया जहां पे अक्षर पटेल कुलदीप यादव इन्होंने बहुत ही अच्छा काम दिखाया, रविन्द्र जडेजा भी।
अजय जी जैसे बता ही चुकी हैं कि भारतीय टीम कल दिल्ली पहुंचेगी, क्योंकि 3 दिन से बारबाडोस में फंसी हुई थी बेदल तूफान के कारण, और अब वहां से रवाना हो गई है, कल सुबह नई दिल्ली पहुंचेगी, और पहुंचने पर वे जो टीम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी, और प्रधानमंत्री से मुलाकात के तुरंत बाद टीम मुंबई के लिए रवाना होगी, और मुंबई में उनके लिए ओपन टॉप बस यात्रा की व्यवस्था की गई है, जैसे 17 साल पहले जब धोनी ब्रिगेड आई थी,
हाँ 2011 में विश्व कप जीत के आई थी, उस समय का बिल्कुल वही दौर याद आ गया कि ये अब रोहित शर्मा इस ब्रिगेड को पूरा लीड करेंगे, और देखिए कितना इन्होंने अपॉर्चून टाइम चूज किया है रिटायर करने का, रविंद्र जडेजा हो जाए फ्रॉम T20 आई क्रिकेट, रविंद्र जडेजा हो गए आपके, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, मतलब एट द पीक ऑफ देयर प्रोग्रेस, पीक ऑफ देयर करियर, और टाइटल जीत के आ रहे हैं, और उसी से देखिएगा कल जो क्राउड का जो उत्साह उमड़ के आएगा वो एक डिफरेंट लेवल का होगा।
बात विम्बल्डन की, विम्बल्डन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के पहले दौर में सुमित नागल और सर्बिया के उनके जोड़ीदार दुसान लाजोविक को हार का सामना करना पड़ा, उन्हें स्पेन की जेम एंटोनी मुनार क्लार तथा पेड्रो मार्टिनेज की जोड़ी ने 2-6 2-6 से मात दी। पुरुष सिंगल्स के बाद अब सुमित नागल डबल्स में भी हारकर बाहर हो गए, शायद ग्रास जो कोर्ट है उसे अनफेमिलियर,
जी हाँ बहुत ज्यादा, कल भी उन्होंने एक कमेंट दिया था मेरे ख्याल से किसी चैनल को दिया था या कहीं दिया था कि ग्रास उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा क्ले कोर्ट्स पे खेले हैं और हार्ड कोर्ट्स पे खेले हैं, तो डेफिनेटली ग्रास उनके लिए दिक्कत होगी, लेकिन जब नेक्स्ट जो उनका जो टूर्नामेंट आ रहा है वो बहुत ही शीर्ष का टूर्नामेंट है पेरिस ओलंपिक्स, और वहां पे सुमित नागल खेल रहे हैं, वो ड्रॉ में हैं और होप करते हैं कि वो इंडिया के लिए बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ें और कोई पदक लेके आए हिंदुस्तान के लिए,
और उसमें ग्रास कोर्ट वहां नहीं,
वहां पे ग्रास कोर्ट नहीं है, वहां पे हार्ड कोर्ट होंगे, तो डेफिनेटली वहां पे इनको जो एक प्लेयर का एक फील गुड वाला फैक्टर होता है कि इस कोर्ट पे अच्छा खेल सकते हैं, तो उनको वो एनवायरमेंट मिलेगी।
और अब कुछ ही देर में रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबिडन का मुकाबला फ्रांस के जियोवेनी मपतेशी पेरिकार्ड और एंड्रियन मनारिनो की जोड़ी से है। भारत ऑस्ट्रेलिया जोड़ी इस टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में खेलेगी, मतलब अब जो उम्मीदें हैं, हालांकि रोहन बोपन्ना पर ही हैं, हालांकि दो और हमारे प्लेयर्स हैं बालाजी और युकी भांबरी भी अपना मैच खेलने वाले हैं, लेकिन जो देखा जाए इतनी उम्र दराज होने के बाद वजूद
जी हाँ 44 साल की उम्र में अगर इतना ज्यादा एंथुजियाज्म है, इतना ज्यादा वो एजाइल है, मैं कहूंगा कोर्ट कवरेज इतना अच्छी तरह कर रहे हैं, तो क्रेडिट टू हिम। इन्होंने अपने करियर को इतना लंबा तक साधा है। 2002 से उन्होंने तो डेविस कप खेलना शुरू किया था और रिटायर किया डेविस कप से इंडिया टीम से 2023 में, तो समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली 20-21 साल का तो उनका सिर्फ डेविस कप करियर था। उसके अलावा सोचिए टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ हिज करियर जो है उन्होंने मेंस डबल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी इसी साल जीता और उसी के चलते वो वर्ल्ड नंबर वन खिलाड़ी बन गए डबल्स के। रोहन बोपन्ना जरूर इस यहां पे भी ग्रास कोर्ट, क्योंकि काफी सारे उन्होंने टूर्नामेंट्स, ये जो है सुमित नागल की तरह नहीं होंगे कि वो ग्रास सिर्फ हार्ड कोर्ट्स या क्ले कोर्ट्स पे खेलने वाले, ये ग्रास कोर्ट पे भी बहुत अच्छा खेले हैं और इन्होंने महेश भूपति के साथ, लिएंडर पेस के साथ, इन सब जोड़ियों के साथ ही साथ भी खेला है और काफी सारी जो है दे हैव एडवांस्ड मतलब गॉन डीप इनटू द टूर्नामेंट्स। और ये विम्बलडन में तीन बार ये ऑल्दो ये फाइनल में नहीं पहुंच पाए हैं, तीन बार ये सेमीफाइनलिस्ट भी रहे हैं, तो काफी उम्मीदें हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद ये इनका मेरे ख्याल से एक फेवरेट टूर्नामेंट, हर खिलाड़ी का फेवरेट टूर्नामेंट होता है विम्बलडन, तो यहां पे जरूर अच्छा अपना परफॉर्मेंस देंगे। ये देखने वाली बात है कि अगर यहां का परफॉर्मेंस अगर अच्छा आता है तो उसी से एक लय बनती है एक कि ओलंपिक्स में जाने के लिए, वेयर ही इज पार्टनरिंग श्रीराम बालाजी, तो श्रीराम बालाजी के साथ जो है इनकी पार्टनरशिप होगी ओलंपिक्स में, तो वहां पे भी लोगों हिंदुस्तान की नजरें लगी रहेंगी कि रोहन बोपन्ना इतने अच्छे फॉर्म में, तो ओलंपिक्स में भी मेडल की उम्मीदें बनाए रखें।
बिल्कुल, और इससे पहले अगर देखें तो कल उलटफेर भी हुआ महिला सिंगल्स में स्पेन की जेसिका मनेरियो ने मौजूदा चैंपियन चेक गणराज्य की मार्केटा वोंद्रासोवा को सीधे सेटों में हराया,
डिफेंडिंग चैंपियन को।
मैच को ऐसे 30 साल पहले पहुंच गई, जब याद दिला दी कि जब पहली बार स्टेफी ग्राफ को लोरी मैकनी ने इसी तरह पहले दौर में हराकर
भारत को, ये बहुत ही बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन हमें और भी देखना है, जैसे ईगा स्विचिक हो गई, इनका परफॉर्मेंस, ये तो वर्ल्ड नंबर वन खिलाड़ी चल रही हैं और इनका जो है ये कभी क्वार्टर फाइनल के आगे नहीं गई हैं विम्बलडन में, तो बेसिकली ये ज्यादा से ज्यादा एक जैसे फ्रेंच प्लेयर्स होते हैं ये सब आपके जो है क्ले कोर्ट या ऑरेंज क्ले पे ही खेलने वाले अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन ईगा स्विचिक पे एक उम्मीद है कि ये आगे जाएंगी इस बार क्वार्टर फाइनल्स, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी आ रही है और ये आगे जा सकती है। उसके अलावा हमारी नजर बनी रहेगी नोवाक जोकोविच के ऊपर भी, जो अपनी 25वीं टाइटल के लिए एम कर रहे हैं, 24 टाइटल जीत चुके हैं और जो बिग फोर थे जिसमें से आपके रफाल नडाल खेल नहीं रहे हैं इस बार, उसके अलावा रॉजर फेडरर बाहर हो चुके हैं, तो ये सब चीजें अगर हम देखें तो जोकोविच पे भी बहुत सारी नजरें होंगी और
एंडी मरे ने भी
बिल्कुल सिंगल से बाहर हो गए, उनको थोड़ी सी कोई इशू हुआ था, हेल्थ सर्जरी हुई थी, हेल्थ इशू हुआ था, वो बाहर हो चुके हैं, तो ऑल इन ऑल जोकोविच और ईगा स्विचिक पे ज्यादा से ज्यादा नजर रहेगी। उसके अलावा ऑफकोर्स अल्कराज, जिन्होंने जोकोविच को हरा के पिछले बार का विम्बलडन का खिताब जीता था।
और अब यूरो कप फुटबॉल की बात करते हैं। यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल की टीमें तय हो गई हैं। जर्मनी, इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अंतिम आठ में जगह बनाई है। अगर देर रात अपनी क्वार्टर फाइनल मैच देखे तुर्की और ऑस्ट्रिया के बीच तो तुर्की ने ऑस्ट्रिया को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और तुर्की के डिफेंडर मेरी डेमरल ने केवल 57 सेकेंड के बाद गोल कर यूरोपीय चैंपियनशिप नॉकआउट राउंड के इतिहास में सबसे तेज गोल का नया रिकॉर्ड बनाया।
जी हाँ, इनका जो परफॉर्मेंस था बहुत काबिले तारीफ था। इन्होंने टर्की आज तक भी कभी भी फाइनल में नहीं पहुंची है, ऑल्दो ऑस्ट्रिया भी कभी फाइनल में नहीं, ऑल्दो ऑस्ट्रिया ने भी कभी टाइटल नहीं जीता, बट ऑस्ट्रिया ने जो है नेदरलैंड्स को ग्रुप स्टेज में 3-2 से हराया था और उसी टीम को टर्की ने हराया है, तो आप लगा लीजिए कि टर्की काफी कमिटेड होके आया है इस टूर्नामेंट में। उसके अलावा नेदरलैंड्स जो हैं वो 3-0 से जो है उन्होंने रोमानिया को कल हरा दिया, एंड सिक्योर्ड क्वार्टर फाइनल प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2008. लास्ट टाइम वो 2008 में पहुंचे थे क्वार्टर फाइनल्स में, और इस बार ये उसके बाद अब ये पहुंचे हैं. और उसका श्रेय जाता है कोडी जैकपो एंड इनके जो दूसरे स्ट्राइकर हैं मलान पे. हाँ जी, तो उन्होंने 3 गोल मारे थे. तो टर्की और ये जो अब क्वार्टर फाइनल का मैच होगा ये टर्की के बीच में होगा और दूसरी तरफ होगी आपकी नेदरलैंड. तो उसमें देखेंगे कौन निकल के आ गया
जी. पहला सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल शुक्रवार को खेला जाएगा. समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए. श्रोताओं प्रियंका अरोड़ा को और अजय मसन जी को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की. नमस्कार.